हरे कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 30। अपनी समस्त चिंताओं, समस्त परेशानियों, समस्त सोचों, समस्त इच्छाओं को साइड में रख के सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे ताकि हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददातु स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सहकर्णरघुनाथन्वितं तं सजीवं साध्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहकर्णललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्ता नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चनं गारङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसूतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता माते की जय हो। जब भगवान ने अर्जुन के समस्त प्रश्नों का उत्तर दे दिया उसके बाद 24 में बहुत ही अच्छी बात बताई कि जो ये सब जान लेगा और समझ लेगा उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसे बताया ना भगवान ने, न सब हुयो भी जायते 24 में, कि वो कभी भी संसार में आएगा नहीं जिसे ये सब कुछ पता चल जाएगा और जो इसको रियलाइज करेगा। अब जाहिर सी बात है इतना समझने के बाद तो भगवान ये बताएगा ना कि कैसे रियलाइज होते हैं परमात्मा। तो फिर भगवान ने आगे बताया 25 में कि कुछ लोग तो ध्यान से करते हैं, कुछ सांख्य योग से करते हैं और कुछ कर्मयोग से अपने हृदय के भीतर परमात्मा का दर्शन करते हैं। लेकिन फिर बताया आगे 26 में कि देखो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है ना। और श्री प्रभुपाद ने भी बोला कलयुग में तो उपयुक्त क्या है कि श्रुति परायणा, कि हमें क्या करना है। बहुत ही सुंदर श्लोक, मुझे अभी तक अच्छा इतना लग रहा है कि बार बार मैं उसको देखती हूँ। और लिखा अन्ये त्वेवं अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायण। के जो सुनने का तरीका, और यही ऑथेंटिक है, यही बहुत ही सुंदर तरीका है कि हम श्रवण करें और उससे हम ये मान लें कि हाँ ये परमात्मा। और श्रवण किसके साथ? श्रद्धा के साथ। तो हमें ये पता चलेगा कि आत्मा है, परमात्मा है, क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ, ये सब हमें श्रुति से बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि पता है शास्त्र इतने सारे हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उन सबको पढ़ना इम्पॉसिबल है हमारे लिए। अब वो हम कैसे पढ़े? और दूसरा ये कि समस्त शास्त्रों का, वेदों का अपना अपना मत है, और मौनी लोग भी बहुत, मतलब संत भी बहुत हैं, इतना अलग अलग, लेकिन जो परंपरा से आते हैं ना, वो हमें एज इट इज जो बताते हैं, तो उनको एक्सेप्ट करके, उनके द्वारा श्रवण करके हम रियल तत्व को समझ सकते हैं। इसीलिए तो भगवान हमेशा बोलते हैं तद्विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्ने ना, आप तत्वदर्शी के पास जाओ, जिसने तत्व को देखा है ना, इसको इसके पास जाओ, उससे प्रश्न करो, वो आपको जो बताएगा ना वही ऑथेंटिक है। इसीलिए कहा गया महाजनो ये न घंता सुपंथा, शास्त्र में है कि आप शास्त्र सब नहीं पढ़ सकते हैं और सारे मुनियों को नहीं, लेकिन महाजन जो हैं, जो वाकई में तत्व को जानते, उनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप सही सही समझ जाओगे। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कल हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि देखो इस ये संसार के अंदर जो भी चर और अचर नजर आता है, जो दिख रहा है, वो सब क्या है? कर्म क्षेत्र और क्षेत्र का मिलाप है। क्षेत्र और क्षेत्र, कर्म क्षेत्र यानी कि शरीर और उसके अंदर क्या कौन है? आत्मा। उन दोनों के मिलाप से बना है। और आगे भगवान श्री कृष्ण ने 28 में बताया कि जो परमात्मा को समस्त शरीरों में साथ देखता है, जो समझता है कि इस शरीर के भीतर ना तो परमात्मा और ना ही आत्मा कभी नष्ट होते हैं, वो रियल में देखता है। यानी कि जो ये समझ गया है कि प्रकृति जब विनाश हो जाता है प्रकृति का, तो भी आत्मा और परमात्मा दो तत्व ऐसे हैं जो कि रह जाते हैं। और आगे भगवान ने 29 में हमें बताया कि जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, समम पश्यन्ति सर्वत्र, जो समान रूप से परमात्मा को देखता है, वह अपने मन द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं, क्यों क्यों नहीं करता? अब देखो हम सब गलतियां करते हैं ना, मतलब मिस्टेक्स करते हैं, अपराध करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमें कोई नहीं देखता। अब देखो जब चार लोग साथ में बैठे होंगे ना, तब कोई गंदा काम नहीं करेंगे, है ना? ऐसा है कि कोई चोरी भी नहीं करेगा एक दूसरे की, मतलब देख रहे हैं ना हम लोग सब एक दूसरे को, तो कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। और लेकिन अगर वो अकेले होगा ना, देख उसको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो फिर उसके हृदय में अपराध आ सकता है। मतलब अकेले में अपराध होता है जब हमें ऐसा फील होता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है मुझे। अब देखो कोई भी मतलब सबके सामने गलत काम नहीं करते हैं, जो भी गलत काम कर रहे होंगे ना, उसके लिए उनको अकेला चाहिए, अकेलापन चाहिए होता है। लेकिन ये 29 में भगवान श्री कृष्ण ने कितना अच्छा बताया है, समम पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, कि जो ये देखता है कि जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र प्रत्येक जीव के समान रूप में देखता है, अब वो देख रहा है कि सबके हृदय में परमात्मा है, मेरे हृदय में परमात्मा है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? न ही नस्त्यात्मा आत्मानम, यानी कि वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। यानी कि फिर वो मन की बात नहीं मानता, वो बोलता देखो मैं तुम्हारी बात कैसे मानू, मेरे साथ आपके साथ में जो परमात्मा भी बैठे हुए हैं वो मुझे देख रहे हैं, और मैं गलत करूंगा तो परमात्मा की नजरों में कितना गिर जाऊंगा। तो ये सोचकर वो कभी भी अपने आप को भ्रष्ट नहीं करते। इस प्रकार क्या होता है, वो सदैव अच्छा काम, मतलब सदैव भक्ति करते रहते हैं, अच्छे सात्विक कार्य करते रहते हैं, तो क्या होता है, इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। ततो याति पराम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। आज तो भगवान श्री कृष्ण इतनी सुंदर बात बता रहे हैं श्लोक 30 में। भगवान पता है क्या कह रहे हैं कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी संसार में कार्य हो रहे हैं, वो आत्मा नहीं कर रही है। मतलब जो भी अब आत्मा, फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन तो फिर भी उठता है ना, अब पहले ये श्लोक पढ़ते हैं फिर मैं आपको क्वेश्चन फेस करवाती हूँ। भगवान कह रहे हैं प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। प्रकृति प्राकृत्यैव, प्राकृत्या मतलब प्रकृति द्वारा, एव मतलब निश्चय ही च, जो भी होता है कर्माणि, यानी जितने भी कर्म हो रहे हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं, प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। अब आगे इसको और अच्छे तरीके से समझाऊंगी। इसमें लिखा हुआ है क्रियमाणानि, क्रियमाणानि मतलब संपन्न किए गए, जो भी कार्य और कर्म जो भी यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं, प्रकृति, प्रकृति मतलब प्रकृति के द्वारा ही हो रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पर आप कोई भी कार्य, कार्य का मतलब क्या होता है, जो भी कार्य होते हैं मतलब वर्ब्स जो हो रहे हैं, जैसे मैं खा रहा हूँ, खेल रही हूँ, सो रही हूँ, बैठ रही हूँ, कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, किसके द्वारा हो रहा है, वो सब करने वाला कौन है, प्रकृति, यानी कि मेरा ये शरीर है, वो शरीर जिससे प्रकृति बनी वही करने वाला ना। अब आगे बता रहे हैं सर्वश मतलब सभी प्रकार से, ठीक है, यह पश्यति तथात्मानम, यह पश्यति मतलब जो पश्यति मतलब देखता है, तथा वो भी, तथा मतलब भी आत्मानम अपने आप को, आत्मा में हूं ना, तो अपने आप को अकर्ता, अकर्ता मतलब नहीं करता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, ये जो अपराध हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। सह पश्यति वही देखता है, यानी कि अब क्या है कि जो भी हो रहा है इस संसार में, प्रकृति एव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश, संसार में जो भी कर्म संपन्न हो रहे हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं, प्रकृति के द्वारा होते हैं। यह पश्यति तथात्मानम, जो यह देखता है और अपने हृदय, अपने आप को, तथा आत्मानम यानी अपने आप को अकर्तारम, अपने आप को अकर्ता समझता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो प्रकृति कर रही है। सह पश्यति, ट्रांसलेशन देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है, शायद हम अच्छे तरीके से समझ पाए अगर गुरु महाराज की कृपा होगी तो। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, प्रकृति है ना शरीर, तो जो भी कार्य कर रहा है वो शरीर कर रहा है। अब देखो, किसी का खून करते हैं तो कौन कर रहा है, शरीर कर रहा है, मतलब शरीर के द्वारा हो रहा है ना, मैं आत्मा तो अंदर बैठी हुई। फिर यहाँ पर यही क्वेश्चन तो रेज होता है, फिर अगर शरीर के द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं तो फिर भुगतना आत्मा को क्यों पड़ता है, है ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, भुगत बेचारी आत्मा रही है ना, शरीर तो वैसे प्रकृति की देन है, वो तो जड़ है, वो तो वस्त्र की तरह है यहाँ पर। तो देखो, मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देती हूँ, देखिए, जब शरीर है ना, जस्ट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है, समझो एक चाकू है, ठीक है, या चाकू है या रिवॉल्वर है, जिस कोई घातक हथियार है, तो उसके जरिए हम क्या करते, अगर कोई करता है, अपराधी होता है, किसी का खून कर देता है, ठीक है, तो खून किसने किया, चाकू ने, उसने चाकू ने किया ना, मतलब उस जो विपन था, उसने जो हथियार उठाया था, चाहे वो गन हो, चाहे रिवॉल्वर हो या चाकू, उसने किया। लेकिन अभी पुलिस वाला आएगा तो फिर चाकू को या उस विपन को लेकर जाएगा, जो हथियार है उसको लेकर जाएगा क्या, नहीं ना, जिसने किया है, वो जो मनुष्य है जिसने किया है उसको लेकर जाएगा। सेम ही बात है कि अब वो शरीर कर रहा है, लेकिन अंदर बैठा हुआ जो मन है ना, मन वो प्रेरित कर रहा है। अब मन बुद्धि अहंकार से प्रेरित हो रहे हैं, और ये क्या होते हैं, ये मन बुद्धि अहंकार को एक सूक्ष्म शरीर होता है ना, वो ऊपर लेकर जाते हैं, यमदूत उसको उसमें से निकाल के लेकर जाते हैं, और सजा उसी को मिल रही है। लेकिन सजा उसी को मिल रही है, और साथ में ये प्रकृति, ये जो आत्मा है ना, वो भी इसके अंदर बैठी हुई है, वो भी उसको भी झेलना पड़ता है, क्योंकि अब जो शरीर कर रहा है उस, क्योंकि आत्मा क्या थी, हम लोगों ने इस चीज को कितना अच्छे से पढ़ा, श्लोक नंबर 13.22 में पढ़ा था, पुरुष प्रकृतिस्तो ही भुंक्ति प्रकृति जैर गुणा। पुरुष मतलब जीव जो है वो, क्योंकि प्रकृति में स्थित हो गया है, अब उस शरीर के अंदर उसको मजबूरन स्थित होना पड़ा है, फिर क्या होता है, वो भुंक्ते, उसको गुणों को भोग करना पड़ता है, जो भी उसने किया हुआ, क्योंकि वो फंस गया है ना, उसके अंदर फंसा हुआ है, उसको ही भोग करना पड़ता है। और उसके कारण क्या है, कारण गुण संगोस्य। अब कारण क्या है कि वो उन गुणों के जरिए, उस गुण के साथ प्रकृति के गुणों के साथ उसकी दोस्ती हो गई, उसका मिलाप हो गया है। अब सदसत योनि जन्मसु, इसी तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। अब जब तक जीव इस प्रकृति के साथ अपने संबंध को तोड़ नहीं देता है, जब तक उस दोस्ती को खत्म करके भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जोड़ता है, तब तक ये सदसद योनि जन्मसु उसे भोगतना पड़ेगा। अब इसी चीज को यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे आपको ये संबंध तोड़ना है। तो ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है, शरीर कैसे बना है, प्रकृति से बना है ना। मैंने आपको बताया था जो 8 मुख्य तत्व हैं, जैसे 7.4 में हमने पढ़ा कौन कौन से हैं, भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धि एवस अहंकार इति यम्मे बिन्ना प्रकृति राष्ट्रदा। भगवान ने बोला ये 8 तरह की प्रकृति है, कौन कौन सी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इस अपरा प्रकृति के द्वारा यह शरीर जो भी संसार में नजर आती है ना, ये चीजें बनी है और यह शरीर भी इसी से बना है। तो ये बता रहे हैं कि जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश, और आगे की बात है यह पश्यति तथात्मानम, यह पश्यति मतलब जो देखता है, तथात्मानम की आत्मा अकर्तारम, कुछ भी नहीं करता है, वो बेचारा बैठा हुआ है लेकिन मजबूर है, जो शरीर के साथ उसकी दोस्ती हो गई है तो शरीर जो कार्य कर रहा है उसमें उसको सहयोग देना पड़ रहा है। लेकिन जो ये देखता है और जो ये देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है, रियल जब उसको ये पता चल जाता है कि आत्मा नहीं कर रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे मेरा आत्मा तो केवल तभी संतुष्ट होगा जब वो भगवान की सेवा में लगेगा। तो फिर जब इसको ये रियलाइज होने लगता है, वो आत्म साक्षात्कार इसको बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये शरीर जो है वो अपने अपने कार्यों में लिप्त है, और है ना मुझे इस शरीर के इंटेंशन से मतलब इन शरीर इंद्रियों के सुख से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि यहाँ तक अगर वो ये देख रहा है जो कार्य है वो शरीर के द्वारा हो रहा है, तो फिर अपनी इंजॉयमेंट कहाँ देखेगा, वो मेरे मुझे मजा कैसे आ रहा है ये संसार में, मैं कैसे मजा करूं, ये तो नहीं देखेगा ना, वो तो देखेगा ये शरीर है बेचारा। इस चीज को भागवतम में इतना अच्छा समझाया गया है, अभी मैं उसको कहूंगी तो फिर हम ना थोड़ा सा ट्रैक से हट जाएंगे। मेरा बहुत मन है कि मैं वो वाले श्लोक भी है ना आप लोगों को बताऊं, लेकिन अब भगवद गीता खत्म हो जाएगी ना तो मैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा, इतना अच्छा है कामेन्द्रिय के काम इंद्रियों से आपको क्या करना है, धर्म किस लिए, अर्थ किस लिए काम, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या बताया गया है कि और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वह यथार्थ में देखता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद और श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाएंगे। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न किए जाते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। यानी कि यह शरीर किसके लिए, यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार, यानी परमात्मा ने जैसा जैसा आदेश दिया है प्रकृति के द्वारा बनाया गया, जो प्रकृति के तत्व है ना उसके द्वारा बनाया गया, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य हैं और आप जितने भी काम कर रहे हो वो उसके द्वारा नहीं किए जाते, मतलब जो जीव है ना आत्मा उसके द्वारा नहीं किए जाते हैं। मनुष्य जो भी करता है चाहे सुख के लिए या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण, यानी कि जो शारीरिक रचना है ना, हम जैसी रचना है, मतलब अब सुख के लिए कार्य कर रहे हो या दुख के लिए, जैसा आपका शरीर है उसके अनुकूल आप करोगे। अब जैसे मछली का शरीर मिला है तो आपका सुख किस में होगा, पानी के अंदर रहने के लिए, लेकिन अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो आपका सुख किस में होगा, फ्लैट में रहने के लिए। तो शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। अब जरूरी है कि शरीर जैसा है मिला है उसके लिए आपको वही टाइप के कार्य करने पड़ते हैं, और फिर करने ही पड़ते हैं, तो फिर करता है जब वो, तो फिर क्या होता है, लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है, आत्मा को इनमें कोई रुचि नहीं होती है उस, लेकिन वो उसके अंदर फंसा हुआ है तो उसका साथ देना पड़ता है, इसको निकालना पड़ेगा, साथ देना पड़ा, लेकिन उसके अंदर वो विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है, जैसी जैसी आपकी इच्छा है। ये चीज को तो भगवान ने भगवद गीता में 8.5 में बहुत अच्छे तरीके से बताया, यो याम यम तन, सॉरी ऐसा नहीं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सरा तद्भाव भावित। आप जिस जिस चीज की इच्छा करते हो आपको वही वही शरीर मिलेगा। आप ये मैं आपको बता दूं, अभी इस समय ब्रह्मा जी को भी पता नहीं होगा कि आपका दूसरा शरीर कौन सा मिलेगा, क्योंकि वो तो उस टाइम पर जब एंड होगा ना आपकी लाइफ का, उस टाइम पर निश्चित किया जाएगा कि आपको दूसरा शरीर कौन सा, क्योंकि उस टाइम पर आपकी चेतना किसके अंदर होगी, आपकी इच्छा क्या होगी। अगर आपको उस टाइम पर भगवान याद आ गया तो फिर जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कह दिया, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अपने शरीर को त्यागते हुए मुझे याद करता है उसका तो दूसरा जन्म होता ही नहीं, लेकिन जो जो जिस जिसको याद करेगा, अगर आप ना छोड़ो इसको, जिसको भी याद करोगे वही आपको शरीर प्राप्त होगा, जो जो इच्छाएं होंगी उनके अनुसार, इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है। यहाँ पर तो बताया कि ये शरीर इच्छाओं की पूर्ति के लिए मिलता है, जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। वास्तविक इच्छा जाननी पड़ेगी, और वास्तविक इच्छा जानने से पहले वास्तविकता जाननी पड़ेगी। ये शरीर वाक्य, ये श्री प्रभुपाद ने बिल्कुल सही स्टेटमेंट है श्री प्रभुपाद का, कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, लेकिन ये तो पहले देखें कि हम हैं कौन, उसके बाद ही हम इच्छा कर अपनी इच्छा। ये तो जो यहाँ पर आके कर रहे हैं ना, वो शरीर की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा आत्मा की नहीं हो सकती। पहले खुद को जानना है कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा की इच्छा केवल ये है कि मैं अपने परमात्मा के श्री चरणों में कब समर्पित हूँ, मैं कब जाके श्री चरणों के आश्रय प्राप्त करूँ, कब मैं जाके भगवान की सेवा में लगूँ, और इसी इच्छा की पूर्ति के लिए ये शरीर मिला है। अपनी वास्तविकता को जाने बगैर हम अपनी इच्छा को नहीं जान सकते। एक पागल है जिसको पता ही नहीं है मैं क्या हूँ, मुझे मैं कौन हूँ, तब उसे क्या पता चलेगा कि मेरा लक्ष्य क्या है। जब हमें पता चल जाएगा ना कि हम कौन है, तब हमें पता चलेगा कि हमें इच्छा कैसे करनी है। तो यहाँ पर तो श्री प्रभुपाद ने बताया, इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिला है, जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पर समझने की है, कि एक तरह से शरीर एक यंत्र है। यंत्र समझते हो, इंस्ट्रूमेंट, जैसे कोई भी गाड़ी है, जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। यानी कि एक ऐसी यंत्र है, एक ऐसी चीज है जिसको भगवान ने क्यों बनाया, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख भोगता है। अब क्यों भोग रहा है, क्योंकि उसने अपनी इच्छाएं जो है वो शरीर से संबंधित कर दिए। अब शरीर को, अगर शरीर की इच्छाएं होती है ना, मुझे ये चीज चाहिए, जब मिल जाती है तो सुख, नहीं मिलती है तो दुख। तो ये सारी इच्छाएं हमने क्यों कर दी है इसके साथ, इसको हमने अभी 22 में पढ़ा कि हमने इसलिए कर दी है क्योंकि हमने इस शरीर के साथ, इस प्रकृति के साथ दोस्ती कर दी है। कारणम गुण संगस्य, कारण क्या है कि गुणों के साथ उसका संग हो गया, प्रकृति के साथ भोंगते प्रकृति जहर गुण, प्रकृति के साथ उसकी दोस्ती हो गई है, और उसकी इच्छाएं जो है, वो जो शरीर की इच्छा है ना, उसमें डाइवर्ट हो गई। हालांकि शरीर क्यों मिला है, आपकी रियलिटी को प्राप्त करने के लिए, आप अपनी अस्तित्व को, अपनी असली हैसियत को कैसे प्राप्त करो उसके लिए मिला है, लेकिन अपने आत्मा को फंसा दिया और फिर जो शरीर की मांगे हैं उसको पूरा करने में ही जीवन गुजार दिया, उसी के कारण सुख और दुख का अनुभव होता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्य से पृथक हो जाता है। जैसे ही पता चलेगा, अरे मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं, ये तो शरीर है, एक यंत्र है, ये तो मेरा नौकर है, मुझे मेरी सेवा करने के लिए मिला है, इस शरीर के जरिए मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। जैसे मैंने बताया था ना, गाड़ी है ये जिसमें चढ़कर आपको अपने लक्ष्य कृष्ण धाम तक पहुंचना है। तो जब ये पता चल जाएगा, जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, तो वो शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है। फिर बोलता है मुझे नहीं दोस्ती करनी तुम्हारे से, मुझे तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने आप को भटकाना नहीं है, सदा सद योनि जन्मसु, दूसरी दूसरी अच्छी और बुरी योनियों में मुझे नहीं जाना है, मुझे तो मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता, मुझे तो वो जगह पर जाना है जहां पर मेरा रियल स्वरूप है, मुझे अपनी रियलिटी, अपने कृष्ण के दासत्व को स्वीकार करना है। तुम्हारा दास क्यों बनूं मैं? फिर तो पता चल गया ना कि तुम शरीर हो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की वजह से सुख और दुख को क्यों भोगूं? तो वो शारीरिक क्रिया से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दिव्य दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक दृष्टा है, श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला, इतना अच्छा है, मुझे अच्छा लगता था, यह पश्यति स पश्यति, यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम। यह पश्यति यानी जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, स पश्यति वही देखता है, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वही वास्तविक दृष्टा है, यानी देखने वाला तो वही है। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।